ओम शांति। शाम का टाइम हमारा योग के लिए होता है। हमें योग और ज्ञान का बैलेंस रखना है, क्योंकि हम आए हैं योग भट्टी करने के लिए। ज्ञान तो हम वैसे भी बहुत सुन रहे थे। लॉकडाउन से पहले तो अपने क्लास टीचर से मुरली सुनते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद कितनी मुरलियां सुनते हैं, सारे वर्ल्ड की सुनते हैं, कितनी ऑनलाइन क्लासेस सुनते हैं, है ना? तो ज्ञान की कोई कमी नहीं है अभी, परंतु ये जो योग भट्टी का समय था वो तो सुनकर बस छोड़ देते थे, पर यहाँ जो स्पेशल बाबा ने टाइम दिया वो इसलिए था कि सुनो और फिर अपनी चेकिंग करो और फिर अपने आप को चेंज करो। जब खेती करते हैं तो जमीन को पहले हल चलाकर ठीक किया जाता है, फिर इसमें बीज बोते हैं, फिर बीज जब फलता है, फसल तैयार हो रही होती है, तो सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ देना होता है। पहले खुदाई, हल जोतने के लिए खुदाई, फिर वो गुड़ाई निराई बोलते हैं ना, कि जो फसल हमने लगाई है उसके साथ साथ अनवांटेड, अननेसेसरी, अवांछित खरपतवार, घास फूस, तृणमूल उगकर आते हैं, और वो जो मुख्य फसल है उसके साथ कंपटीशन कर रहे होते हैं। और अगर उस खरपतवार को, उस घास फूस को, उस तृणमूल को जो अनवांटेड है, अननेसेसरी है, अवांछित है, व्यर्थ है, उसको अगर नहीं निकाला तो क्या होगा? फसल बराबर नहीं होगी। तो भट्टी में भी इसीलिए तो बुलाया था कि ज्ञान सुनो, मन रूपी धरती पर सुंदर श्रेष्ठ संकल्प पकड़ के उसके बीज बो। और जब बीज बोने जाएंगे तो दिखाई देगा अनवांटेड वेस्ट भी आ रहा है, और ऐसे भट्टी में माना पकना जिसको कहा था पहले दिन, पकने में करना क्या था? इस अनवांटेड को निकाल कर फेंकना था। क्योंकि देखो, वैसे भी क्या कहते हैं, एक पत्थर के अंदर मूरत समाई होती है। शिल्पकार क्या करता है, मूर्ति नहीं बनाता है, पत्थर को उठाता है और उसमें छिपी मूर्ति को पहले विजुअलाइज कर लेता है, और विजुअलाइज करके वहां पर उस प्रकार से निशान बना लेता है। और निशान के अलावा जो अतिरिक्त है उसको निकालता है और बढ़िया सी मूरत तैयार हो जाती है, जो मंदिर में बैठाने योग्य होती है, जिसमें एक आकर्षण होता है। आकर्षण मूरत, बाबा कहते हैं ना, तुम्हें क्या बनना है, आकर्षण मूरत बनना है। तो वो जो मंदिर की मूरत होती है, जो हमें आकर्षित करती है, पहले दिन भी कहा था उसमें तीन विशेषताएं दिख रही होती है। मंदिर की मूरत अंतर्मुख होती है। मंदिर की मूरत हर्षित मुख होती है। मंदिर की मूरत ज्वालामुख होती है। तो हमारी जो भक्ति का लक्ष्य है, चलो संपन्नता की ओर। तो संपन्न बनना ही माना क्या? संपन्नता अंदर भरी हुई है, पर करना क्या है? अभी उसमें जो अनवांटेड, अवांछनीय, व्यर्थ, अननेसेसरी भरा पड़ा है, उसको निकालते जाओ, निकालते जाओ, तो आपकी संपन्न मूरत तो वहां बैठी हुई है। बाबा कहते हैं ना, ये क्या है तन? एक मंदिर है। इस मंदिर में कौन बैठा है? बाबा कहते हैं, मेरी प्रिय चैतन्य मूरत बैठी है। तो इस मंदिर की क्या करनी थी हमें? सफाई करनी थी। उस मूरत में जो अनवांटेड आ गया था, उसको निकालना था। ये बार बार, ये जो बार बार कहा जा रहा था, चार धामों की यात्रा करो, बाबा को पत्र लिखो, फरिश्ते जैसी अपनी स्थिति बनाओ, मौन को ब्रेक मत दो, ये अंतर्मुखी बनकर रहो। ये सब क्या थे? ये सब आवश्यक फैक्टर्स थे उस मंदिर की मूर्ति को आकर्षण मूरत बनाने के लिए। कि चार धाम की यात्रा करके क्या करना था? धाम माना क्या होता है? लौकिक में भी चार धाम होते हैं ना, तो धाम की मीनिंग क्या होती है? धाम माना जहां के वाइब्रेशन, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जहां से हम उस धाम वाले स्थान पर गए हैं, उस दुनिया से उस धाम के जो वाइब्रेशन है बहुत हाई क्वालिटी के हैं। कि जहां पर जाते ही घर बार की जिम्मेवारियां भूल जाते हैं, जो चिंताएं चल रही थी उन चिंताओं से फारिग हो जाते हैं, एक रिलैक्स की फीलिंग जो घर बार की जिम्मेवारियों के बीच में तरस रहे थे कि कब इन चिंताओं से मुक्त वाली स्थिति का अनुभव करेंगे, उसको कहते हैं चार धाम लौकिक में भी। और बाबा ने कहा, हमारे पास तो यही चार धाम है, क्योंकि दुनिया के भी चार धाम किससे रिलेटेड है? या तो शिव से या तो विष्णु से। और इस मधुबन की धरती में भी क्या है? वो शिव पिता परमात्मा अवतरित हुए ब्रह्मा के तन में, जिस ब्रह्मा को उसे कहां तक पहुंचाना था? विष्णु तक पहुंचाना था। तो इसीलिए तो हम यहां के भी चार धामों को वही कहते हैं, चार स्थानों को हम कहते हैं ये चार धाम है। और फिर कहा था पत्र लिखो, तो पत्र लिखे बाबा को, पत्रों के रिप्लाई मिले बाबा से। हाँ, तो पत्र में क्या लिखना था? हाँ, या तो धन्यवाद करना होता है कि बाबा इतना जो तूने दिया है, बाबा हमें क्या से क्या बना दिया है, वो धन्यवाद के भाव व्यक्त करने थे, या कुछ वो बातें जीवन की जिनसे मन कभी फ्री नहीं हो रहा है, बहुत सोच रहे हैं, ज्ञान का चिंतन मंथन करें, लेकिन सुई बार बार उसी एक पॉइंट पे अटक जाती है। पहले ग्रामोफोन्स होते थे ना, तो सुई अगर कहीं अटक गई, वही चलता रहता है। तो कई बार जीवन की कुछ बातें ऐसी होती है, कितना भी कोशिश करें, मन को कितना भी समझाएं, थोड़ी देर उसमें चलेगा और फिर वो गड्ढे में सुई गिरेगी और वही करेगा। तो दुनिया के अंदर भी हम देखते हैं कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो डॉक्टर्स फुल चेकअप कर लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता है। और डॉक्टर्स कहते हैं फुल चेकअप कर लिया, सब कुछ ठीक है, और तब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन को भी अपनाते हैं। शायद पूर्व जन्म में कुछ हुआ है जो अंदर प्रिंट गहरा हुआ है और वो ही अपने आप उभर उभर कर आ रहा है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या करते हैं, वो पीछे के जन्मों में लेके जाते हैं, जब तक कि वो शिकायत जिस चीज की कर रहा है वहां तक नहीं पहुंच जाता। और जब वहां तक पहुंच जाता है, उसको फील कर लेता है, उसको रियलाइज कर लेता है, उसको झाड़ लेता है, आत्मा की स्लेट से वो निकल जाता है। तो हमें भट्टी में क्या करना था, चार धाम तो कर ही रहे थे हम, फिर यहां बैठ के योग कौन सा करना था हमें? स्लेट को साफ करना था। मौन में इसलिए तो छोड़ दिया गया था कि आप अंतर्मुखी हो जाओ और अंदर में जाके मन रूपी धरती पर, मन रूपी बगीचे में क्या क्या अननेसेसरी उपकर आ रहा है उसको निकालो, उसको फेंको। क्योंकि जब तक अंदर में नहीं जाएंगे, रियलाइजेशन नहीं होंगी, वो जो बात बार बार खटक खटक के योग में बैठते हैं, सुई जाके वहीं पे अटक जाती है। तो जब तक उसको नहीं समझेंगे, जब तक उसको निकाल के बाबा को अर्पित नहीं करेंगे, तो गड्ढा भरेगा ही नहीं, वो गड्ढा नहीं भरेगा और बार बार वहीं चले जाएंगे। तो चार धाम की यात्रा में पावरफुल वाइब्रेशंस, परम धाम की यात्रा में उससे भी ज्यादा पावरफुल, क्योंकि नाम ही है परम धाम। और परम की डेफिनेशन क्या देते हैं, हाँ, हम भी आत्मा वो भी आत्मा, लेकिन वो क्या है, परम आत्मा है, ऊंचे ते ऊंचा है, उससे ऊंचा कोई और नहीं है। तो परम धाम के वाइब्रेशन कैसे है, यहाँ के डेफिनेटली ऊंचे हैं जहां से हम आए हैं, लेकिन परम धाम के उससे भी ऊंचे हैं। तो यहां बैठकर क्या करना था, उस परम धाम में चले जाना था, उस परम धाम में, क्योंकि बाबा कहते हैं पावरफुल याद जहां मन बुद्धि दिल और शरीर चारों ही स्थिर हो जाए। क्या क्या स्थिर हो जाए, मन बुद्धि दिल और शरीर, तभी तो पावरफुल याद होगी। और इसीलिए बैठक वाली याद का समय दिया गया था। तो जब वो पावरफुल याद हम करते, जब उस परमात्मा के परमधाम में, उसके सानिध्य में बैठ जाते, स्थिर हो जाते, तो वो तो सागर है गुणों का, हम तो गागर है। और उस गागर में भी क्या भर गई है? गंदगी आ गई है। तो क्या करना था? उसका निरंतर, उसकी किरणों का प्रवाह अपने गागर में भरना था, कि जिससे गागर भरे भी और गागर की जो गंदगी है वो निकल कर बाहर आ जाए और मैं आत्मा एकदम स्वच्छ। आज भी बाबा हमें कहते हैं कि मैं पतित पावन हूं, मेरा काम ही है पतितों को पावन बनाना। लेकिन बावजूद उसके कहते हैं, बच्चे तुम तो हो ही शुद्ध स्वरूप, बच्चे तुम तो हो ही प्रेम स्वरूप, बच्चे तुम तो हो ही आनंद स्वरूप। तो हम वो है भी, लेकिन हम पतित भी हैं। और इसलिए उस गागर का जो पानी निकल रहा था वो गंदगी के साथ निकल रहा था। पवित्र तो है, प्रेम स्वरूप तो है, लेकिन चूंकि गागर में गंदगी है तो ऐसी गागर से जब पानी निकालेंगे तो क्या होगा? मिक्सचरिटी होगी ना, मिलावट होगी ना। तो ये अंतर्मुखी होकर यही काम करना था। और जब ऐसा अंतर्मुखी होकर उस परमधाम में बैठकर मुख और मन का मौन धारण करते, जो बाबा ने कहा ना पांचवी पॉइंट, दादी का भी सौगात, तो क्या होता? लाइट और माइट से वायुमंडल संपन्न होता। कैसे? क्योंकि कचरा गिर जाता ना, कचरा गिर जाता तो बचता क्या? शुद्ध पवित्र उसका प्रकाश, शुद्धता पवित्रता प्रेम का लाइट और माइट चारों तरफ फैलता और अपने आप सूक्ष्म शकाश वाली सेवा हो जाती, मेरा स्वयं का भी कल्याण और विश्व का भी कल्याण। तो ये जो हर्षित मुक्ता दूसरी विशेषता मूरत की, ये आती ही तब है जब कचरा निकल जाता है। बल्ब के ऊपर जो कांच का हिस्सा है, अंदर तो फिलामेंट है, स्विच ऑन करते तो फिलामेंट रोशनी देता है, वो कांच नहीं देता है। लेकिन कांच तो पारदर्शी होने के कारण अंदर के प्रकाश को अपने में से ठीक वैसे ही गुजरने देता है जैसा वो प्रकाश है। लेकिन अगर उसके ऊपर गंदगी आ जाए तो अंदर तो शुद्ध प्रकाश वहां से बहने को, लेकिन कांच के पास आते आते क्या हो जा रहा है? डिम हो रहा है। तो बाहर कैसा वाला प्रवाह आ रहा है? डिम वाला। तो हर्षित मुक्ता कब होगी? जब वो कांच साफ होगा तो अंदर का प्रकाश बिल्कुल क्लीन क्लियर बाहर आएगा, तो हर्षित मुक्ता। क्या अंतर है खुशी में और हर्षित मुख में? खुशी और हर्षित मुक्ता क्या अंतर है? खुशी माना कि जैसे टेम्पररी नहीं, खुशी माना जैसे बाबा क्या कहते हैं, खुश रहो भी और खुशी बांटो भी, संतुष्ट रहो भी, संतुष्ट करो भी। तो हर्ष माना खुशी का वो स्वरूप कि जिसमें मैं स्वयं भी खुशी का अनुभव करता हूँ और मेरे से खुशी के वो वाइब्रेशन इतने क्लीन वाले निकलकर दूसरे की खुशी की फाइल को जाके खोल देते हैं और उसमें भी खुशी का संचार कर देते हैं, इसको कहते हैं हर्ष। तो मंदिर की मूरत क्या कर रही होती है, अब कितने भी दुखी चले जाओ वहां पर, कितने भी दुखी, लेकिन पल भर का दर्शन, पल भर के लिए तो आपको दुखों से दूर कर देता है, पल भर के लिए आपको खुशी की अनुभूति करा देता है। इसलिए तो कहा हर्षित मुख। और चूंकि कांच स्वच्छ है तो वो खुशी भी आ रही है और वो प्रकाश भी डिम नहीं होकर, वो जितने वाट का बल्ब है उतनी ही इंटेंसिटी वाला प्रकाश आ रहा है, तब कहा मंदिर के मूरत में ज्वालामुख का भी दर्शन अर्थात दिव्यता, वो चमक का एहसास होता है। तो मौन भट्टी में हमें यही करना था, कचरे को निकाल निकाल कर फेंकना था और उसके लिए कंटिन्यूस उस परमात्मा की किरणों के प्रवाह को, शक्ति के प्रवाह को, गुणों के प्रवाह को, उस ज्ञान को, इसलिए बार बार क्लास भी दी जा रही थी और बाकी सबसे आपको मुक्त छोड़ा गया था। किसने पूरा अंतर्मुखी का पालन किया, किसने पूरे मुख और मौन पर, मन के मौन पर अटेंशन रखा, किस किसने रखा, शायद नहीं, एक आत्मा हाथ उठा रही है, कोई बात नहीं। लेकिन जब भट्टी करके लौटो, एक एक दिन निकालो ऐसा कि जहां मुझे टोटल अंतर्मुखी रहना है, बातें भले आएगी मुझे कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। वो कहानी आती है ना, भगवान मंदिर की मूरत बनकर खड़े हैं मंदिर में और सेवक क्या कर रहा है, सूरज भाई आ गए, सूरज भाई आ गए, और सेवक पुजारी बन के सेवा कर रहा है, उसको क्या मिल रहा है, साफ सफाई करता है मंदिर की, मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसमें उसके गुजर बसर का पैसा उसको मिल जाता है। तो बड़ा परेशान था, शिकायतें करता था लोगों को, क्या मिलता है, गुजर बसर भी नहीं होता है, और एक दिन शिकायत भगवान को भी कर डाले, इतनी गरीबी, इतना दिक्कत से जीवन गुजरती है, भगवान आपकी जिंदगी कितनी आसान है, बस खड़े हो गए हो मूरत बनकर, मेरी जिंदगी में कितनी कठिनाई है, काश मुझे एक दिन आपकी जगह पर खड़े रहने का चांस मिल जाए। भगवान ने कहा इतना इजी नहीं है जितना तुम समझते हो, नहीं नहीं आपकी जिंदगी बहुत आसान है, मुझे एक दिन का अवसर दे दीजिए। भगवान ने कहा नहीं है इतनी आसान, फिर भी तुम जिद करते हो, ठीक है, इसमें बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। नहीं नहीं मैं धैर्य रखूंगा, सब शर्तों का पालन करूंगा। ठीक है, एक दिन तय हुआ, आज तुम भगवान की मूरत बनकर खड़ी रहो, लेकिन मंदिर में बहुत सारे भगत आएंगे, बहुत कुछ अपनी बातें कहेंगे, कुछ बुरा भी कहेंगे, कुछ भला भी कहेंगे, लेकिन तुम्हें चुपचाप रहना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है। जी भगवान जी, तो बहुत आसान काम है। खड़ा हो गया, भगवान जी उसकी जगह पे थे, साफ सफाई करके निकल गए। व्यापारी आया धनी, नई फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, आशीर्वाद दो। और जैसे ही प्रार्थना करके प्रणाम करने गया, बटुआ गिर गया, ध्यान नहीं चला गया। उसके बाद गरीब आदमी आया, बहुत गरीबी है, रोज की रोटी भी इंतजाम नहीं हो रही है, दवाई की व्यवस्था नहीं हो रही है, माँ बीमार है, प्रभु कुछ चमत्कार कर दो। ऐसी प्रार्थना करके हाथ जोड़ रहा है नीचे बटुआ। ओ प्रभु, आप कितने दयालु हैं। बटुआ खोल के देखता है, कुछ दिन तो आराम से निकल जाएगी, चला जाता है। फिर नाविक आता है, 15 दिन समुद्री जहाज की यात्रा पर जा रहा हूँ, सुरक्षित यात्रा रहे, सकुशल पहुँच जाऊँ। उतने में वो धनी व्यापारी पुलिस को लेकर पहुँच जाता है। यही वो व्यक्ति है जिसने मेरा बटुआ चुराया है, इसको गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार करने जाता है, वो मूरत देख रही है, इसका तो नहीं है कसूर, पर नहीं, भगवान जी ने कहा चुपचाप रहना है, अपने आप को रोका। और फिर इतने में गरीब व्यक्ति आया, वो तो चला गया, मतलब वो नाविक को उसने रोकने के लिए कहा, पर फिर उतने में क्या होता है, वो गरीब व्यक्ति, गरीब माना धनी व्यक्ति के समय भी चुप रहा, जो कुछ बोला गरीब व्यक्ति के भी समय चुप रहा, लेकिन नाविक के समय बोल उठा, क्योंकि पुलिस उसको गिरफ्तार कर रही थी। इसको लगा अन्याय होने जा रहा है, कहा नहीं नहीं, इसने चोरी नहीं की, इससे पहले तो कोई गरीब व्यक्ति आया था, इसको छोड़ दो। उसको छोड़ दिया, गरीब व्यक्ति को पकड़ा और चोरी किया। और आके भगवान जी शाम को आ गए, बड़ी खुशी से कहता है, मैंने आज बहुत अच्छा काम कर लिया, आपकी जगह पे रह गए, किसी के साथ अन्याय होते उसको रोक दिया। और भगवान जी ने क्या कहा, अनर्थ कर डाला। वो नाविक को जेल होने वाली, वो नाविक जो यात्रा पे जाने वाला था, जिसको जेल मिलती अगर तो अच्छा होता, क्योंकि समुद्री तूफान में उसकी मौत हो गई होती, लेकिन क्या किया, तो चुप रहने का कितना महत्व होता है, पर शायद हमने नहीं समझा। लेकिन जाने के बाद यहाँ से दृढ़ संकल्प करके जाओ कि घर में जाकर, सेंटर पे जाकर एक एक दिन तो भी हम मौन का धारण करेंगे, तब अंतर्मुखी होंगे, वो हर्षित मुक्ता बाहर आएगी, वो ज्वालामुखी, वो लाइट हाउस वाली स्थिति अपने आप आएंगी, और हमारे से अपने आप सूक्ष्म सकाश की सेवा होती है।